जय श्री श्री माधवेंद्र प्रिपाद की स्वामी तत्वृंद की विक्रमानंद। तो आज स्थिति हमारे स्कंद में बड़ा प्रसिद्ध है, जो लोग सब जाते हैं गुरु पूर्णिमा उत्सव में नवदीप मंडल परिक्रमा में भाग लेने के लिए। परिक्रमा के उपरांत ये अमलकी एकादशी के दूसरे दिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्या? शांतिपुर उत्सव। प्राय सभी लोग शांतिपुर जाते हैं। तो शांतिपुर जाने का यही लक्ष्य है कि शांतिपुर नाथ सीतापति श्री अद्वैत आचार्य गोसाई वो अपने गुरुदेव के श्राद्ध तिथि पालन करते हैं, सबको भोजन कराना चाहते हैं। मालूम आपके तिरुभाव तिथि है आज के दिन द्वादशी। तो एक बार ये इतने प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप भ्रमण में थे, तो उन्होंने शांतिपुर में थे उसी समय में यही स्थिति आया। मतलब गौर पूर्णिमा से आपने जन्मदिन के अव्यवहित पूर्व में भगवान शांतिपुर में थे, तो और एक द्वादशी तिथि आया और अद्वैत आचार्य भी थे। अद्वैत आचार्य अपने गुरु जी का साधना करने की जो व्यवस्था किए, तो इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित थे। तो किस प्रकार उन्होंने पालन के किस पर भाग लिए, इसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी एक ऐसे भक्त हैं जिनका वर्णन चैतन्य शाखा गणन में कहा गया कि जो प्रेम भक्ति का जो वृक्ष है, इस वृक्ष का जो मुख्य अंग है हमारे माधवेंद्रपुरी, बाकी सब उनके शाखा है, ये मेन रूट है। जिन सचमुच उनसे पहले भगवान की भगवत्ता के द्वारा ही भगवत महिमा प्रकाश होता था, भगवत प्रेम ही भगवत्ता के अंग है, ये तो माधवेंद्रपुरी ही इसको लाए। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शरीर में हमेशा गौर सुंदर भगवान रहते थे, यद्यपि उनके दादा गुरु हैं लेकिन फिर भी भगवान तो नित्य हैं। तो इस बात को शास्त्र में प्रमाणित किया गया। तो इसे माधवेंद्रपुरी जो जिनके जन्मस्थान तो बंगाल है, जिन्होंने बचपन से वैराग्य लेकर के भ्रमण कर रहे थे, परिभ्राजन कर रहे थे पूरे भारतवर्ष के हर तिथि हर तीर्थ स्थान, तो करते करते उनके महिमा जब एक बार तो उनका मिलन भी हुआ था पंढरपुर में नित्यानंद प्रभु के साथ, नित्यानंद प्रभु जो टूर में थे पिलग्रिमेज में उनका वहीं भेंट हुआ था, बड़े दोनों का प्रेम मिलाप हुआ था। उसके बाद में माधवेंद्रपुरी का महिमा वर्णन आता है, जब उन्होंने एक बार घूमते फिरते श्री धाम वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन परिक्रमा आदि करके स्नान करके उन्होंने गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने के लिए चले, और तभी जमाने में कोई कार ट्रेन तो नहीं था, टेम्पो भी नहीं था, नो थ्री व्हीलर टू व्हीलर कोई व्हीलर नहीं था। तो वो बेचारे ऐसे प्रकृति के संत थे जिनका एक नियम था अजाचक वृत्ति, जाचना नहीं करते थे, जाचना उनको मांगना किसी को कुछ नहीं मांगते थे, अगर किसी ने कुछ लाकर दिया उनको बिना मांगे तो लेते स्वीकार करते थे, लेकिन स्वयं नहीं मांगते थे। अगर भूख लगे नहीं मांगेंगे, भूख ज्यादा है तो नहीं, खींच हमें मर भी जाए तभी नहीं मांगेंगे, किसी भी आवश्यकता के लिए किसी कुछ नहीं मांगते थे, उनका नियम ये था कट्टर अजाचक वृत्ति। उसमें जब वृंदावन आ गए थोड़ा उनके नियम से और कठोरता ला लिए, क्या? पहले तो केवल यही रखे थे, किसी कुछ नहीं मांगेंगे, जो जो दिया उसको लेकर के अपने शरीर निर्वाह करते थे। लेकिन ब्रज में आने के बाद उनके मन में विचार आया, ये ब्रज मेरे इष्ट का स्थान है, मेरे प्रभु का ही लीला स्थली है। यहाँ प्रभु मेरे किस प्रकार लीला किए थे, गोपाल बन करके, राखाल बालक, बछड़े गाय चरा करके प्रभु ने ही लीला किए। तो प्रभु जी गोपाल बने थे, गोवंश की रक्षा किए थे, गो दूध में पाले थे, तो मैं केवल यहां जब तक रहूंगा ब्रज में तब तक केवल गोरस में ही जीवन धारण करूंगा और अन्न फल कुछ नहीं लूंगा, ये नियम और ले लिए। एक तो मांगेंगे नहीं और भी कोई अगर दे रोटी चावल नहीं भी खाऊंगा, फल भी नहीं खाऊंगा, तब केवल क्या खाऊंगा दूध खाऊंगा। ये और वस्तु ले लिए थे और अपने मन में डिसीजन करते, किसी बताते तो नहीं, और लेकर के वृंदावन में से गोवर्धन गए, पैदल में गए। आप लोग कई बार सब गए होंगे परिक्रमा वृंदावन में, कार में गए होंगे, पैदल में तो कहीं नहीं गए होंगे। पैदल में जाएंगे केवल 30 किलोमीटर है, फिर वो 20 किलोमीटर और चलेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा 20-22 किलोमीटर है और वृंदावन से गोवर्धन पहुंचने में 30 किलोमीटर है, तो डबल परिक्रमा है। तो पैदल में गए, जा करके फिर गोवर्धन की परिक्रमा भी किए और अजात शत्रु वृत्ति है। इतने थके वृद्ध व्यक्ति थे, थके हुए चल रहे थे अपने भजन करते करते। कोई ब्रजवासी देखते थे इतने बड़े तेजस्वी संत है, बड़े महापुरुष लगते हैं, लेकिन पेट पीछे गया है, लगते सुबह से खाना वाना नहीं खाए हैं और बेचारे शरण के मारे किसी मानते नहीं। तो कोई ब्रजवासी आकर के श्रद्धालु उनको दिए, ब्रज में इसे देते हैं क्योंकि प्रसिद्ध है, लोग मांगकर खा लेते हैं, जो संत आते हैं तो उनको रोटी साग ला कर दिए। तो मना नहीं किया, स्वीकार किए, लेकिन अपना नियम में खाऊंगा नहीं रोटी। तो लेकर के कोई और यहाँ तो ब्रज में बहुत लोग करके उनको दे दिए, किसी बोल दे दिए, कोई देखे नहीं, हाँ बाबा को दिए तो खाया ही नहीं। फिर पुकारा, अरे लगता है कुछ व्रत अल्लाह कर रहा है, अन्नाहार फलाहार करेगा लगता है, अरे उसको फलाहार चाहिए, वो थोड़ी खाएगा, बोलता नहीं कुछ। तो कई लोग सब लेकर फलाहार दिए ला करके, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। कोई अगर रोटी वोटी दिए उनको नहीं खाया तो बोलेंगे व्रत है सर, फलाहार करेगा। तो फल ला करके दिए, फल उसको भी स्वीकार किए और दूसरे को दे दिए, उसको भी नहीं खाया, बोले पता नहीं पगला कुछ गड़बड़ी है, नहीं खाया। अब पूरा परिक्रमा किए, लोगों ने जो मदद किया तो किए, फिर भी भूखे में परिक्रमा करके और गोविंद कुंड के पास बैठ करके, वो आप मन में क्या डिसाइड किया खाने के लिए, किसी को बताया तो है ही नहीं, उसने पर तो बताएंगे नहीं, किसी मांगेंगे भी नहीं, अब बैठे। तो इसी प्रकार के भजननिष्ठ महात्मा जो आपने मन से अड़ करके बैठे हैं, तो उनके मन के जानने वाले थे एकमात्र व्यक्ति ब्रजवासी ब्रजेश्वर सी अंतर्जामी भगवान ही होंगे, और कौन जानेगा। तो भगवान अंतर्जामी जो अंतर को जानने वाले वो आए, बोले शाम होने से पहले बुढ़ापे को दे देना चाहिए खाने के लिए, बहुत भूखा। तो उन्होंने एक मिट्टी के कलश में दूध लेकर के आते हैं, वो आकर के उनको बोलते हैं कि बाबा दूध ले लो पी लो, क्यों भूखा बैठता है, हमारा गांव में कोई आकर भूखा नहीं रहते, कोई यहां आते तो मांगकर खा लेते हैं, कैसे करते हैं, तेरे जैसे कोई ढीठ आता है ना तो मांगता भी नहीं, मुझे आना पड़ता देने के लिए, क्या करना। तो इस प्रकार से भगवान उनके पास आए और जिन अद्वित आचार्य जिनको भगवान भी स्वयं आचार्य करके मानते हैं, वो साक्षात भगवता अवतार थे अद्वित आचार्य। उन्होंने जब सबसे प्रथम माधवेंद्रपुरी को देखे, वो इतने आकर्षित आकृष्ट हुए कि उनके मन में लोभ आया कि उनके चरण में जीवन समर्पण करना चाहिए। देखिए भगवत अवतार आचार्य अद्वित ने जो साक्षात सदाशिव है, उन्होंने भी जिनको लोभ करके बड़े उनके चरण में समर्पण, उनसे शिष्यत्व स्वीकार किए, लोग लगा ऐसे भक्त है, ऐसे भक्त कितने प्रेमी भक्त थे माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य को ही गुरु बनाए साक्षात भगवान, तो कितने बड़े पुरुष होंगे, किसे भक्ति होंगे। उनके जो माधवेंद्रपुरी के भक्ति के महिमा को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्री मुख कमल से भक्त मंडल को बताते रहे। जब पुरी जाते समय में जब रेमुणा में पहुंचे, गोपीनाथ को दर्शन किए, दर्शन करे, खूब नृत्य कीर्तन करके उनके मन में याद आया इस गोपीनाथ की प्रसिद्धि गोपीनाथ में था, गोपीनाथ का असली प्रतिनिधित्व तो मेरे दादा लोग के कारण हुआ। तब बताया, बोले कैसे? बोले उनका जो टाइटल खीर चोर है ना, चोर टाइटल ये मेरे परम गुरु के लिए हुआ है। तो इसलिए वो कहानी स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख को बताते हैं, बताते बताए माधवपुरी का किस प्रकार हुआ घटना बता करके अंत में ये तक यहां तक बताते हैं, इससे पता चलेगा कैसे माधवपुरी थे। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर। साक्षात महाप्रभु कहते हैं कि है नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम को कहते हैं नित्यानंद प्रभु विचार कीजिए, पूरी समय भाग्यवान जगत नहीं आ, जगत में पूरी जैसे माधवंद प्रीति जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। क्यों? ना दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिलो, दूध देने के लिए भगवान स्वयं इसको दर्शन दिया आ करके। दुग्ध दान तो बहाना था, उनको दर्शन देना था, उनको कृपा करना था, इसलिए भगवान ने दूध के कलश लेकर आए। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिलो, तीनी बारे स्वप्न आसी जारे आज्ञा कर ल, एक बार ने तीन तीन बार उनके पास सपने में आए आकर उनसे बातचीत किए। जारा प्रेम बस होया प्रकट होइला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जिनका प्रेम के कारण कई दिन से मिट्टी के नीचे थे, झाड़ी के नीचे, इनके प्रेम के कारण स्वयं अपना प्रकट कराए, उनके द्वारा सेवा को स्वीकार किए और जगत को उद्धार किए। अभी भी श्री नाथ जी के नाम में प्रसिद्ध है, हजारों लाखों लोग को दर्शन देकर के उद्धार करते हैं, वही है जिनके नाम कहते हैं, जो भगवान स्वयं कहते हैं, जिनको दर्शन देकर के जगत उद्धार किए, वही है। जारा लागी गोपीनाथ खीर कैला चुरी, अतएव नाम है खीर चोरा हरी। बोलते जिसके लिए गोपीनाथ ने स्वयं जिनके कारण खीर चोरी किए, आपने आपको चोर बना डाले। बता ईसा अवश्य निगम सर्वम जत किंचा जगत्याम, जगत संपूर्ण जगत ईश्वर का ही है और किसी का नहीं है, लेकिन वो फिर चोरी क्यों करे? अगर चोरी तो वही करेगा जिसको अभाव है। और चोरी इसको कहा जाएगा अगर आपका कोई समान नहीं है, दूसरे का समान है और उनको बिना बोले आप ले ले, दूसरे का समान उसको बिना पूछे अगर ले ले तो उनको चोरी कहा जाता है। सारे समान तो नहीं कही, उनको किसको पूछा है? हम लोग सब उनको पूछते हैं, वो किसको पूछ कर लेंगे? चोरी हो कैसे सकता है? लेकिन फिर भी भगवान को चोरी करना पड़ा, केवल माधवपुरी के प्रेम के कारण चोरी कर करके आपने टाइटल चेंज करके खीर चोरा हरी बन गए जिनके लिए। तो इस प्रकार माधवपुरी के बारे में बताते बताते यहां तक कहते हैं बोलते इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अपने श्रीमुख से माधवपुरी का महिमा बताते बताते एता बोली पढ़े प्रभु तारक कृत श्लोक सही श्लोक चंद्रे जगत करे आलोक। बोलते हैं कि माधवपुरी का एक श्लोक वो गाते थे, माधवपुरी का जब शरीर उन्होंने त्याग करते थे तभी वही थे, गोपीनाथ के पास थे रेमुना में, उसी गांव में। तब उनके शिष्य एक थे रामचंद्रपुरी, एक थे ईश्वरपुरी, वो दोनों उनके सेवा में थे। वो अंतिम समय में वृद्ध थे और उठ करके कुछ कर नहीं सकते थे, अपने बाथरूम के जाना स्नान करना कुछ नहीं करते, बेड में ही टॉयलेट पेशाब जो भी आप जानते हैं सब अवस्था में स्कूल का होते बेड रिटर्न हो इसी अवस्था में थे। और इस अवस्था में रह करके बहुत रोते थे, आवाज करके रो रो करके बड़े क्रंदन करते थे। तो उनके जो शिष्य रामचंद्रपुरी थे उन्होंने जाकर बोले प्रभु गुरुदेव आप तो साक्षात परम ब्रह्म के साक्षात्कार किए हैं, इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं, भक्त हैं, आप अगर रोएंगे इसे तो हमको दुख लग रहा है, तो लोग दूसरा लोग क्या समझेंगे? आप तो सर्व सहा सब कुछ सहन करके बिल्कुल शांति में ब्रह्म चिंतन में रहना चाहिए, आप इसे रोते विकल होकर के दूसरे को मैसेज क्या जाएगा? हम इसे रोते चलाते ये बात को सुन करके माधवन गुरु बोले दूर मेरे सामने से, मैं मरने से पहले आप लोगों को देखना नहीं चाहता हूं, गड़ा मरने से पहले हमको उनके शिष्य को निकाल दिया, बोले कभी मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं, आपका मुंह देखकर मरने से मेरा दुर्गति होगा, निकाल दिया। केवल यही बात की गुरुदेव आप तो नमस्तर से है, आप चिंतन के शांति में रहना चाहिए इतने मगर, क्योंकि उनके मन के भाव कौन समझता है, बोले तुम मूर्ख तू क्या जानता है। तो दूसरे शिष्य ईश्वरपुरी थे, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से गुरुदेव का सेवा किए। उस समय में मुमूर्ष अवस्था में आपने हाथ से, तभी जमाने में ग्लोव्स भी नहीं था और आटा जाथों को होता ही नहीं आता, आपने खाली हाथ से गुरु जी का इतने प्रकार के जो अति घृण्य सेवा जिसे कहते हैं, जो साधारण लोग करते नहीं, किसी को बुलाते हैं नर्स को, वो भी ग्लोव्स ग्लोव्स नाक में कान में हाथ में देकर किसी को करते हैं जो सेवा, इसी की सेवा कुछ नहीं था, इतने श्रद्धा से विश्वास से गुरु जी की सेवा किए और उन्हीं के साथ रहे अंत तक। तो आचार्य ग्रंथ इन्हीं के कारण माधवन पुरी का एकादश भक्तिमय सेवा श्रद्धा से किए थे, इसी के कारण से उनके सौभाग्य मिला कि साक्षात भगवान के गुरु बने, यही कारण था। भक्त की सेवा से परिणाम प्राप्त होता है, ये फल प्राप्त होता है। तो जब उन्होंने अंतिम समय में रोते रोते एक श्लोक गाते थे, आवृत्ति करते थे, एक ही श्लोक, श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कहते हैं अंत में वर्णन करते करते, बल्कि पुरी गोस्वामी जो श्लोक को गाते थे, ये श्लोक चंद्रमा की तरह चमकता है जो संपूर्ण जगत को आलोकित कर सकता है। घसीते घसीते रेछे मणय जप सारा गंध बाड़े ते छे ऐ श्लोके रा विचार, बोलते श्लोक को जितने बोलेंगे उनके मधुराती मधुर गुण और बढ़ते जाएगा, जैसा चंदन को घिसने से उसका सेंट बढ़ता ना, बोले चंदन को जितने घिसेंगे इतने पेस्ट निकला, इतने शीतलता और सुगंधता बढ़ेगा। इस प्रकार श्लोक को जितने आवृत्ति करेंगे, जितने उसको चिंतन करेंगे, इतने उसका रस निकलेगा। रत्नगण मध्य कौस्तुभमणि रस वाक्य मध्य श्लोक गणी, बोलते जितने रत्न है, रत्न में सर्वश्रेष्ठ रत्न है कौस्तुभ मणि, जो साक्षात भगवान के गले में रहता है और किसी के पास नहीं, एक ही है बस, वो उनके पास है। बोले जैसे रत्न में सार रत्न है कौस्तुभ मणि, जो भगवान के गला में शोभा पाता है, ठीक इसी प्रकार जितने प्रकार के श्लोक है, जितने प्रकार के रस रसिक रस रसयुक्त श्लोक है, काव्य है, गीत है, ये सब में सार है यही श्लोक, उसके बढ़कर कुछ हुई नहीं श्लोक राधा ठाकुरानी। ये श्लोक की रचयिता कौन है? साक्षात श्री राधिका जी। ऐ श्लोक करिया छे ना राधा ठाकुरानी तारा कृपा स्प्रिया छे माधवेंद्र वाणी, और उनके कृपा से माधवेंद्र के वाणी से श्लोक निकल रहा है। किसकी कृपा से? श्री राधा जी की कृपा से। किवा गौरचंद्र इहा करे आस्वादन इहा आस्वादित नहीं चौथ जन। महाप्रभु कहते हैं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक को समझने का अधिकारी व्यक्ति सारे ब्रह्मांड में तीन ही है, चौथा तो कोई है ही नहीं, ना जन्म ही हुआ है। चौथा व्यक्ति श्लोक को जानने वाले को जन्म ही नहीं हुआ, केवल तीन ही व्यक्ति श्लोक को जानते हैं। बोलते कौन? बोले एक तो श्लोक के रचयिता और गाने वाली स्वयं श्री राधा रानी, दो नंबर में माधवेंद्रपुरी जी, और तीन नंबर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, फोर्थ कोई है ही नहीं अब तक। इतने स्तर में श्री राधा जी और भगवान के बीच में उनको रखा गया कि इस श्लोक के मर्मार्थ वो जानते हैं, भगवान बात को कबूल करते हैं। बोले यस ओ, तो श्लोक को बोलते हैं शेष काले यही श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति है पूरी श्लोकेरा सहित। इस श्लोक को उच्चारण करते करते श्लोक के साथ में उनके प्राणवायु निकल गया था, इस श्लोक अंत पूरा हुआ, उनका जीवन पूरा हुआ। इस श्लोक का आवृत्ति करते रो करके, ये श्लोक क्या था आप सुनना चाहेंगे? छोटी सी श्लोक था, ऐ दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय तदावलोक कातरं दैत भाम्यति किं करोमि अहम्, बस इतना ही। हे दीन दयाद नाथ मथुरा नाथ है, हृदय तद अवलोक कातरंग, मथुरा नाथ कदा तब दीन दयाद नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तद अवलोक कातरंग दैतंग भाम्यति किं करोमि अहम्। इस श्लोक का अर्थ को स्वयं भगवान कहते हैं, लोग जानते हैं। तो इस श्लोक को भगवान ने सब पूछे होंगे भगवान के सामने, आप बताए बताए प्लीज। तो भगवान ने उनको बताए थे कि श्लोक का मर्मार्थ क्या है। इस श्लोक स्वयं राधा जी की उक्ति है, कभी जब भगवान ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन त्याग करके मथुरा चल गए थे, जब मथुरा गए मामा जी ने उनको वीआईपी पास दे करके अपना गाड़ी देकर बुला लिया, गए तभी ब्रजवासी लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो लोग तो गए, लेकिन सब जो गोपियां स्त्रियां अवसर रह गए वो तो नहीं गए। तो उन लोग ने खूब उनको रिक्वेस्ट किए थे, कैसे जा रहे हैं आप जानते हैं कैसे जा रहे हैं, तो भगवान ने उनको वचन देकर गए थे कि मैं जा रहा हूं वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। तो इस वचन के आधार करके, वचन को आधार करके वो जिए थे, बस उनका जीने का एकमात्र वही था, इसको करके जिए थे। तो लेकिन भगवान आए नहीं, कंस के उद्धार तो हो गया, उसके बाद में जदुवंश की स्थापना हुआ, भगवान ने कही अपने एजुकेशन पढ़ा लिखे करके आए, बाकी बस काम में बिजी हो गए आते ही। तो उनके वचन दे करके न आने के कारण गोपिका लोग तो बड़े दुखी थे ही, बहुत दुखी थे। इस दुख के कारण अब दोबारा भगवान भी एक मैसेंजर भेजे, दूत भेजे, चिट्ठी लिख करके भेजे, भेजकर बोले मैं आऊंगा, नोट कर मैं आऊंगा, आप थोड़ा धैर्य धारण करो मैं आऊंगा, फिर भी नहीं आए। तो विरह से कातर होकर, अधीर होकर के गोपिकाओं के शिरोमणि श्री राधिका जी रो करके श्लोक बोलते हैं दीन दयाद्र नाथ, अरे दीन दयाद्र नाथ, अरे मतलब है उच्चारण कर है दीन, बोलते हैं कि जो दीनहीन है, जिनका कुछ नहीं है, बिल्कुल निराश निस्सहाय है, असमर्थ है, इस प्रकार दीनहीन व्यक्ति है, इस प्रकार दीन के ऊपर दया करने वाले, कैसे दया, ना दीन के दुख दे करके जिनके हृदय दया के कारण आर्द्र मतलब पिघल जाता, मेल्ट हो जाता, जिनके हृदय दीन जन को देख करके दया के प्रभाव से मेल्ट हो जाए, पानी पानी हो जाए, गल जाए, उनको कहा जाएगा दीन दयाद्र, दीन के प्रति दया करके जो आर्द्र हो जाते हैं, जो गल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को दीन दयाद्र कहा जाएगा। और दीन दयाद्र नाथ इन लोगों के जो नेता जो हेड़ दिन पाठ, दीन दयाद्र नाथ, यहां दीन किसको कहते हैं राधा जी, स्वयं को, खुद दीन है, बोलते हैं कि मैं तो दीन हूं और आपके दीनों पर दया करने वाले, दीन के ऊपर दया करने ही दीन दयाद्र नाथ, आप दीन के दीन दशा को देख करके दया में पिघल करके आर्द्र हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि जितने दया करने वाले उनके सबसे शिरोमणि दीन दयाद्र नाथ है, ये मैं जानती हूं, दादाणी कहते हैं, पता है आप कभी भी, इसीलिए तो आपका नाम दीनबंधु है, आप दीन दशा को कभी सहन नहीं कर सकते, इस आर्द्रता आपका हृदय बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं इतने कष्ट में रो रहा हूं, बिकल हो रहा हूं, कातर हो रहा हूं, दीनता आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, पिघल तो नहीं क्या, बोलते नहीं नहीं नहीं, वो तो दीन दयाल नाथ है, लेकिन क्या करे, अभी थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ ना, क्या अभी यहां थोड़ी है, अभी मथुरा नाथ हो चुका है, अभी दीन दयाल नाथ नहीं हो तो क्या हो गए, मथुरा नाथ हो चुके हैं, पहले तो ब्रजनाथ थे, ब्रजवासी के प्रति जो आपको मरम था, अभी ब्रजनाथ नहीं रहे, हम तो सब अनपढ़ गवार गांव की है लड़की, अब जब सिटी में रहने वाली उनके बारे में जब आप खबर सुने, अब गाड़ी चढ़कर के सिटी चले गए मथुरा नगर, इस नागरियों के बात उनके गुण रूप सुन करके अब उनके पास चले गए, अब उनके नाथ बन गए। अभी तो मथुरा नाथ है, अब ब्रजनाथ नहीं है, अब दीन दयाल नाथ नहीं रहे, आप अभी मथुरा नाथ है। बोलते चलो हे मथुरा नाथ, याद तो कभी करते हैं ना, जब दूत भेजते याद तो करते, तभी आपके दिन हृदय नहीं पिघलता क्या? अरे दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ, उसके बाद तुरंत मथुरा नाथ करते कि इसीलिए मथुरा में है शायद आप, लेकिन मथुरा में रहकर तो याद तो आता है। हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, कब आपको देखूं, कब आपका दर्शन मिलेगा? आपके दर्शन के कारण बहुत विकल हो रहा हूं, मैंने बहुत बेचैन हो रहा हूं। कदा अवलोक्य से हृदयं तद अवलोक कातरं, मेरा हृदय कातर हो रहा है, बहुत कातर हो रहा है। आप हृदय किस लिए, न कब आपको देखूंगा, आपके अदर्शन के कारण आपके दर्शन नहीं हो रहा है, आप देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरा हृदय तड़प रहा है, हृदय तड़प रहा है आपके दर्शन ना पा करके। अवलोक कैसे हृदय तद अवलोक कातरन, इससे इतने चिंता में मग्न होकर राधा जी जब रो रो कर इस पद को गाती है तो उनको दिखाई पड़ती है साक्षात उनके सामने कृष्ण खड़े हो गया करके, प्रकट हो गए उनके सामने, क्योंकि दया दरनात है, इतने उनको पिघल जाते हैं, वो आ गए आके सामने खड़े हो गए। खड़े हो गए तो उनको सामने देख करके राधा जी बोल ली, बोले हे दैत्य, हे पति, हे नाथ, आप कैसे इतने निष्ठुर होते हैं, कैसे छोड़ के चले जाते हैं? तो मानव जी से ऐसे पूछते हैं तो कृष्ण के सामने बोलते, आप इतने अधर्ष क्यों हो रही है, मैं तो आपका साथी हूं, देखो मेरा कुछ काम है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी पड़ता है ना, कभी कोई जरूरी काम के कारण मुझे जाना ही पड़ता है ना, नहीं यहाँ कहो कई लोगों के देखभाल करना होता है, कोई जरूरी काम में जाना पड़ता है, जरूरी काम ना जाओ, कहीं थोड़ा जरूरी काम बाहर गया तो ऐसे रोएगी, ऐसे हाल होगा, मैं क्या करूं, थोड़ा धैर्य तो धारण करो, मैं आता ही हूं, चिट्ठी भेजा, मैसेंजर भेजा, इतने क्यों परेशान हो रहे, बोलूंगा मैं आ रहा हूं, थोड़ा मैं काम में बिजी हूं, कोई विशेष काम है। इस प्रकार जब भगवान ने उनको बताते हैं तब राधा जी कहते हैं, बोले कि हे दैत्य क्या करूं, समझ रही हूं कि आप विशेष काम में गए आ जाएंगे, लेकिन आपको पता है जिनके हृदय कातर हो चुका है, विरह के मारे जिनका हृदय पागल हो चुका है, बिल्कुल कातर हो चुका, इस सीमा तक आ चुका है, तो उनका भद्र अभद्र शुद्धि अशुद्धि ज्ञान ही लोप हो जाता है, पता ना, जब इतने टेंस में आ जाते फिर समझ नहीं पाता क्या करो क्या ना करो। इस प्रकार विचार शून्य हो चुका हमने, हे दैत्य हे पति, आपको पता है आपके विरह के कारण, आपके अदर्शन के कारण, आपका अभाव के कारण, आप चले गए कब आएंगे सोच करके, मैं इतने कातर हो चुकी हूं, मेरे हृदय इतने तड़प चुका है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, क्या नीति नीति सब भूल चुका हूं, अब मुझे आप मुझे बोलते थे मेरे हो नहीं सकता मेरे से, अब मैं उससे ऊपर जा चुका हूं, तो इसलिए मुझे सब भद्र अभद्र क्या करूं क्या ना करूं विचार नहीं तो कर नहीं पाता हूं, इसलिए तद अवलोक कातर है दैत्य भ्रमयति, मैं भ्रमित हो गया, इस स्थिति में भ्रमित हो चुका हूं, भ्रमित किन करो हम क्या करूं बताइए, मेरी दशा में मैं भ्रमित हो चुका हूं, अब क्या करूं, मैं क्या करना चाहता, आपको तो पता है आप नाथ है, दैत्य मतलब हमारे हृदय नाथ, हम हृदय को जानते हैं, आप जानते हैं हम आपके एब्सेंस को कभी सहन नहीं कर सकते हैं, कदा एक मुहूर्त के लिए आपके एब्सेंस को सहन नहीं कर सकते हैं, तो कृपा करके आप ऑप्शन मत होइए ना, आप प्रेजेंट रहिए, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऑप्शन हो जाते हैं, रमेते क्यों करो में हम, आप फिर चले क्यों जाते हैं, जो ये बात कहते हैं कि आप हमेशा आए रहिए, आप जानते हैं हम बात को मचाइए, तो ये बात सुन करके भगवान फिर बोलते नहीं मुझे भी तुम्हारा काम करना होगा, आप आकर के बोला उन्हें आप धैर्य धारण करो, आपको करना उचित है, आप क्यों मुझे फोर्स करते हैं इसे करने के लिए, आप समझा करो, समझ करके ऐसा करो। बोलते हैं कि अगर समझ आता तब तो फिर ऐसे क्यों होता, हम समझ से परे हैं, इतने कातर हो चुके हैं, अब क्या कर सकती हूं, अब क्या कर सकती हूं, ये बात कहते हैं। बोले आप संभालो, मेरे काम में जा रहा हूं, भगवान चले गए। तो और विकल होकर बोलते अब क्या करूं, अब तक फिर भी चले गए। श्री भगवान के मिलन से आतुर होकर के कातर भाव से श्री राधिका जी के जो भाव, ये भाव राधिका जी की, भाव माधवेंद्रपुरी की जिह्वा में उचरित हो रहा है। माधवेंद्रपुरी श्री राधिका जी के अंतरंग मंजरी है, उनके सखी के अशिष्टान है, सखी है, इसलिए उन भाव को उनके निकट है, उनके पास में खड़े थे। माधवेंद्रपुरी अपने अंतर, अपने सिद्ध शरीर में राधा जी के पास में खड़े, उनके दशा देखते हैं, उनके आंख से आंसू बह रहा है, उनके भाव कैसा, कैसे बिकट आतर होकर के भाव में प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को, इस भाव को देख रहे हैं, देख करके उन्हीं के भाव से भावित होकर के वो भी रो रो करके इसे चिंतन करते हैं, ऐ दीन दयानाथ मथुरा नाथ, उन्हीं के भाव से पूर्ण राधा भाव से भावित होकर के इस वाणी उनके उच्चारित हो रहा है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इस क्या करो कह करके शरीर उनके छूट जाता है, उन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसी धाम में चला जाता है। तो इसी बात को पूर्ण इसी स्थिति में थे, इस बात को श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, इसी का आस्वादन तो चौथा कोई कर ही नहीं सकता, राधा जी थे, फिर पुरी गोस्वामी, और मैं करता हूं, वास्तव कोई नहीं, इतने उच्च कोटि के भक्त थे। हम कभी कभी, हम क्या प्राय सभी लोग, आप सभी लोग सोचते हैं कि चलो शास्त्र में कहा गया है सब छड़ी कहां करो वास, ब्रजवास, वृंदावन वास सबसे श्रेष्ठ है, वृंदावन में रहना हमारा, बाकी तो सिद्धि हो जाएगा, इसलिए तो आजकल वृंदावन तो बन ही नहीं रहा, और इतने अपार्टमेंट फ्लैट्स भर गया, क्योंकि सब ब्रजवासी के लिए इतने उद्विग्न, इतने कातर हो गए ब्रजवास करने के लिए, लेकिन ब्रजवास का अधिकार क्या हम लोग हैं, हम लोग तो ब्रजवास करना चाहते हैं क्योंकि गोस्वामी लोग ने हमको सिखा दिए ब्रज का महिमा, लेकिन जो गोस्वामी ब्रज का महिमा बताए, वो जो ब्रज में आए, एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन के कांटेक्ट किए थे मेरे लिए 2 BHK, एक स्टूडियो अपार्टमेंट है तो रखना, 15-20 लाख वाला जो होगा, ऐसे किए थे क्या, नहीं, वो लोग आकर पेड़ पेड़ के नीचे दिन गुजार रहे थे, कभी भी 20-25 फुट वाला भी कोई जगह खरीदे नहीं थे, कोई नहीं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं कर रहे इसके, लेकिन हम तो केवल एक ही पार्ट के लिए इसी को समझ गए, भूल गए। और उन लोग ने ब्रज के पास का अधिकार भी बताया कि क्या होना चाहिए ब्रज में रहने का, क्या अधिकार, त्यक्त्वा पूर्ण मसे समन्वय पति श्रेणीम सदा तुच्छवत भुक्त्वा दीन गणेश तो करुणया कोपी न कंथासितो गोपी भाव रसा मता दिल हरि कल्लोल मग्न, ये गोपी भाव अवस्था को प्राप्त करके फिर ब्रज में आता है, प्राप्त करने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ा, क्या क्या बनना पड़ा, दीन हीन कोपी न कंठा स्थित, हम तो गाड़ी और फ्लाट स्थित होकर के जाएंगे, कैसे हो सकता, लेकिन ब्रजवास के अधिकार के माधवेंद्रपुरी का नहीं था। अरे माधवेंद्रपुरी से बढ़कर के ब्रजवासी है कौन, जिनको साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन कहते हैं कि राधा जी और मेरे बीच के भाव को जानने वाला तो एकमात्र ब्रह्मांड में पुरुष ही है, कोई जानती, कोई जानता था, इस भाव को उन्होंने प्रकट करते करते सिद्ध देह में गए, अपने शरीर रखे अंत समय में, लेकिन उनको आप उनके चरित्र पढ़िए, उन्होंने ब्रज में आए, भगवान ने तो उनको रिक्वेस्ट करके सेवा में लगा के ब्रज में रखी दी, बोले नहीं मैं तो तभी से देख अपेक्षा कर रहा था माधवेंद्र कब आएगा, माधवेंद्र कब आएगा मुझे उद्धार करेगा, नहलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, गोपाल जी ने सिन्हा जी ने उनको आग्रह करके रखे, और जब भगवान को उद्धार किए देखे तो उनके सेवा में माधवेंद्रपुरी जी नियुक्त हुई, मुझे क्या करें, अब 2 साल तक कंटिन्यूस वही रहे, उनके सेवा करते रहे, साक्षात भगवान की सेवा करते रहे, लेकिन 2 साल के बाद में भगवान ने उनको व्रत से आउट कर दिए, कोई बात ना, और आउट कर दिए, आ रहे थे चंदन लेकर, आने नहीं दिए, बोले ना दे दे, और अंत तक ब्रज में आने नहीं दिए, उनके शरीर तो रेमुना में रहा, वही उनके सबसे कितने छोटे सिंपल समाधि, कोई जैसे वो थे ऐसे उनके समाधि भी अभी है, बिल्कुल ऐसे उनके भाव के लायक। तो उनको ब्रज में आने नहीं दिए, जो साक्षात ब्रजवासी थे, पूर्ण अधिकार जाता, उनको नहीं आने दिए। और लेकिन हम लोग सोचते हैं हम कर लेंगे, प्लाट खरीद कर ब्रजवासी बन जाएंगे, नहीं। तो इसी भाव को इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रीपुरी माधवेंद्र पुरी ही जानते हैं। तो आज जो भगवान जो पुरी गोस्वामी को पहचानते हैं, उनके तिथि के दिन उन्होंने शांतिपुर में थे, जब उनको चंदन लेने के लिए भगवान ने भेजे, उन्होंने चलते चलते गोवर्धन से पुरी की तरफ जा रहे थे, तभी तो ट्रेन भी चलता नहीं था, रोड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पैदल में चलते 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 बंगाल होकर जा रहे थे। बंगाल में जब पहुंचे थे शांतिपुर में, तब श्री अद्वित आचार्य जो साक्षात भगवान अवतार थे, तो उनको देख करके इतने प्रभावित हुए थे, तो उनके शिष्यत्व स्वीकार किए थे। उनको दीक्षा देने के बाद में फिर वहीं से गए थे उन्होंने पुरी कोर्जी रास्ता। फिर गोपीनाथ ने उनको लीला, उनके साथ लीला किए, फिर जैसे गोपरी से वापस आए चंदन लेकर, फिर वहीं रह गए। इस प्रकार से आज उनके तिरुभाव हो चुकने के बाद उनका तिथि, उनके तिथि में श्रीमन महाप्रभु तभी शांतिपुर में थे, तब श्री वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हैं। मैं सोचता हूँ उसको पढ़ लूंगा, बंगाली से समझ पाते हैं ना, नहीं थोड़ा थोड़ा बताऊं। एई मत सर्व भक्त कृष्ण शरीर इहा बुझे जे हय परम महाधीर अभेद दृष्टिते कृष्ण वैष्णव भजिया से कृष्ण चरण से बे से अरतरिया जिगा से सुने ए सकल पुण्य कथा वैष्णव अपराध तार ना जन्मे सर्वथा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि किस प्रकार भक्त भगवान किस प्रकार लीला कि यही मत सर्व भक्त कृष्ण शरीर, इस प्रकार सारे भक्त कृष्ण के शरीर में रहते हैं और कृष्ण सर्व भक्त के शरीर में रहते हैं, इसको जो समझ पाता है वही धीर है, महाधीर है। इस प्रकार अभेद दृष्टि से कृष्ण वैष्णव, कृष्ण को और वैष्णव को दोनों को जो भजन करता है, भक्त और भगवान को दोनों को जो भजन करता है, जय कृष्ण चरण सेवे से मरा तरिया से जाकर, इस प्रकार विचार करके भगवान और भक्त अभेद और भेद इस प्रकार भाव लेकर जो भजन करता है वो तर जाएगा और उनका वैष्णव अपराध जन्म ही नहीं होगा। सर्वथा वैष्णव अपराध तर नजर में सर्वथा हे नमते श्री गौरा सुंदर शांतिपुरे आछे न परमानंदे अद्वैत मंदिरे। इस प्रकार श्री गौर सुंदर भगवान शांतिपुर में अद्वैत भवन में निवास किए हैं। माधवेन्द्र पुरी आराधना पुण्य तिथि दैव जोगे उत्पन्न कैल आसी तथि। उसी समय माधवेन्द्र पुरी का पुण्य तिथि आज के द्वादशी तिथि हनुमान द्वादशी आकर पहुंचा। माधवेन्द्र अद्वैते यद्यपि भेद नाही, बोलते माधवेन्द्र अद्वैत में दोनों भेद नहीं, यद्यपि भेद नाही तथापि तहन शिष्य आचार गोस्वामी, फिर भी भेद नहीं है लेकिन फिर भी एक गुरु एक शिष्य, ये भेद है, यही हमारा फिलोसफी है, दर्शन है, अचिंत्य भेद अभेद। माधवेन्द्र पुरी देह श्री गौर सुंदर सत्य 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 विहर निरंतर। कहते हैं कि माधवेन्द्र पुरी के शरीर में श्री गौर सुंदर भगवान हमेशा रहते हैं, ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, निरंतर रहते हैं उनके शरीर में, माधवेन्द्र के शरीर में, यदि भी भगवान का प्रकट ही नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उनके शरीर में रहते थे। माधवेन्द्र पुरी का कथा अकथ्य विष्णु भक्ति कृष्ण प्रसाद सर्व काल पूर्ण शक्ति जमते अद्वैत शिष्य चित्त दिया सुना से मंगल आख्यान। बोलते हैं कि माधवेन्द्र पुरी तो कृष्ण शक्ति से पूर्ण थे, किस प्रकार अद्वित आचार्य उनके शिष्य हुए, बोलते मंगल आख्यान बताते हैं क्या। जे समय नाशिला चैतन्य अवतार, चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं लिए थे, विष्णु भक्ति शून्य सब आशिला संसार तखन माधवेन्द्र चैतन्य कृपा प्रेम सिंधु माझे भाषे न सदा। जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था, सारे संसार माया फंसे हुए थे, तभी माधवेन्द्र पुरी अकेले प्रेम भक्ति में थे, प्रेम सिंध में थे, निरवधि देह मरा हर्ष, निरवधि देह रोम हर्ष अश्रु कंप हंकार गर्जन महाहस्य दम्भ धर्म, सारे प्रकार के सात्विक विकार को प्रकट कर रहे थे। निरवधि गोविंदेरा ध्यान नहीं बाह्य आपने ना जानने की करने कार्य, अपना शरीर स्वयं भूल जाते थे भक्ति के कारण, इतने उन्मत्त रहते थे। इस प्रकार जब चलते चलते आकर के पहुंचे थे शांतिपुर में, बोलते हैं कि कखन बा हेना से आनंद मूर्छा है, दुई तीनी प्रहर है वो देह बाह्य नय, कब कब मूर्छा हो जाते हैं, एक प्रहर तीन घंटा, तीन प्रहर मतलब नौ घंटा, छह घंटा नौ घंटा तक संचलित कुमार में रहते पड़े रहते हैं। कखन बा बिहरे से करे न क्रंदन गंगा धारा बहे जन अद्भुत कथन, कब कब उठ करके रोते थे, बोलते गंगा जमुना का धारा आंख से बहता है जैसे, ऐसे रोते थे। इस प्रकार दशा था, कखन हासे न अति अट्ट अट्ट हास परानंद रसे क्षणे हर अधिक वास, कभी कभी इतने हंसते थे सारे कपड़ा वड़ा उतार के नंगे होकर नाचते थे, इतने पागल हो जाते थे अधिक वास। यही मत कृष्ण सुखी माधवेंद्र सुखी सबे भक्ति सुनने लोग देखी बड़ा दुखी, स्वयं तो सुखी थे लेकिन लोग भक्ति से ही नहीं इसलिए दुखी होते थे। इस प्रकार उनके चरित्र थे। इस प्रकार जब आकर के पहुंचे थे तब आदित्य चरण को देखे, देख करके समझ गए तो महाभक्ति भाव से पूर्ण है। इस प्रकार देख करके उनको प्रणाम किए और उनको ठकालिंगन किए, दोनों दोनों को लेकर लोट पोट करके दोनों दोनों को अभिषिक्त किया अपने अपने आंसू से। इस प्रकार महान थे और उन्हें शिष्य सूत्र स्वीकार किए थे, उनको दिखा देकर उन्हें आगे चले थे। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी आराधना रति बसे सर्वस्व निक्षेप करे अद्वैत हरि से। इस प्रकार अद्वैताचार्य जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, अपने गुरुदेव के साधक तिथि के कारण आज उन्हें डिक्लार किए, आज मुझे गुरु जी के तिथि है, साधक तिथि है, इसलिए मैं जो कुछ है सर्वस्व नोछावर कर दूंगा। माधवेंद्र पुरी आराधना रति बसे सर्वस्व निक्षेप करे अद्वैत हरि से, अद्वैत खुश होकर के सब कुछ लुटाना चाहते हैं जो उनके पास था। दैव से पुण्य तिथि आसिया मिला संतोष से अद्वैत सजा करते लग गया, और उस तिथि में भगवान उनके घर में थे, अद्वैताचार्य अरेंजमेंट करने लगे। क्या करने लगे, श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने बड़ा सुखी है लेना सही पुण्य दिने, भगवान बहुत प्रसन्न है कि आज तिथि पर मैं यहाँ हूँ। सही तिथि पूजी वाले आचार्य गोसाई जत सजा कर लेना तारा अंत नहीं, आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य क्या क्या अरेंजमेंट किए उस तिथि को पालन करने के लिए उसको बताते हैं। नाना जी कहते सज लागिल आसिते हे न नहीं जानी कोई आनाए को न भीते, क्योंकि भगवान स्वयं थे और अद्वैत आचार्य भी करना चाहते थे, दोनों भगवान जो काम करना चाहेंगे तो कैसे नहीं होगा। बोले कि क्या हुआ, ना नाना दिग है थे, चारों दिग से लोग आने लगे, नाना प्रकार के भेंट सामग्री लेकर आने लगे, कौन कहां से क्या क्या ला रहे हैं। माधवेंद्र पुरी के प्रति प्रीति सभाकार, आसपास सभी लोग माधवेंद्र को बहुत प्रेम करते थे, प्रीति सभाकार सभी लय ने जथा योग्य अधिकार, जिनका जो अधिकार कोई ना कोई को द्रव्य लेकर आते, कोई खाली हाथ नहीं आते, सब लेकर आते थे। आई लाई लेना जब तक अंधे ने रहा, तो लिस्ट बताते हैं कुछ लोगों का कौन कौन क्या ली, आई जानते हैं किसको कहते, सची माता महाप्रभु के मां सची मां उनको आई कहते हैं, आई शब्द मां के मां को आई कहते हैं, है ना, तो इसलिए जगत के पिता हैं गुरु सुंदर, जगत माता विष्णु प्रिया, जगत मां के माता की भगवान की माता एवं आई है रानी माता, सब इसलिए आई कहते। आई सची माता आ करके वो कौन सा डिपार्टमेंट संभाले, किचन डिपार्टमेंट, कुकिंग करने का काम उनका था। वो अपने कुछ ग्रुप ले लिए होंगे, कुछ माता जी के साथ ले लिए होंगे, वो कमर कसकर खड़े होंगे, बोले चिंता मत करो लाखों लोगों के कुकिंग, और तभी जो उन्होंने गैस चूल्हा भी था नहीं, इतने बड़े बड़े हंडा बड़े बड़े चूल्हा लहंग नहीं, चूल्हा सब लकड़ी का होता था और बर्तन सब मिट्टी का ही होता था। आजकल मिट्टी के बर्तन को माता जी को एक्सपर्ट कुक कोई करते हैं, वो तोड़ी गए आधा से तीन जो फ्लैट से पलता से एक बार मारेंगे तो नीचे से उधार हो जाएगा, क्या क्या फीलिंग करेंगे, लकड़ी के चूल्हा तो कुकिंग करना जानते ही नहीं, आग नहीं लगेगा, फूंक मारना पड़ेगा, आंख से आंसू बहेगा, धुआं कैसे लकड़ी लगाए कैसे करें, लेकिन लकड़ी के चूल्हा में मिट्टी के बर्तन में लाखों लोग आ रहे थे, सभी के कुकिंग करने का दायित्व तो हंसी खुशी से सची मां ने ले लिया, बोले मैंने करूं, डोंट वरी। हम लोग को तो छोटे मोटे कोई आते हैं 2-5 हजार में एक कुक रेंट करके लाना पड़ता है ना, आई लगे ना जब तक रंधन रफा रंधन के बाहर भी, किस लिए बोलते हैं कि इतने प्रेम था माधवेंद्रपुरी के प्रति, इतने भाव था, स्वयं राजी हो गए, बोले कुछ भी हो जाए पूरी कसर लगा कर हम कुकिंग करेंगे सब के लिए। आई बड़ी सर्व वैष्णव परिवार, और बोलते हैं कि जितने वैष्णव से मेरा परिवार है और सारे वुमेन्स डिपार्टमेंट सब उनके साथ आ गए, सारे माता जी बोले आई है उनके साथ हम लोग है सब करेंगे, और उनके बाद नित्यानंद प्रभु उठे, बोले हम भी निमित्त है, क्या नित्यानंद प्रभु संतोष अपार वैष्णव पूजित लगे ना अधिकार, क्या डिपार्टमेंट गए नित्यानंद प्रभु गेस्ट रिसेप्शन, बोले बहुत लोग आ गए उनके रिसेप्शन प्रॉपर होना चाहिए, रिसेप्शन कैसा, हम लोग बैठ कर रिसेप्शन बोले आप पहले बुकिंग किया था आपने, कहा कंफर्मेशन देखा बुकिंग किया था, तब अप्रूव मिलेगा हमारा पुजारी से है ना, अगर पहले नहीं क्या कटा पहले बुकिंग नहीं था कैसे आगे पर्ची लेकर आओ, कब फोन किए थे किसे बुकिंग किए थे, रिसेप्शन में बैठते ही हम डर लगता रिसेप्शन जाने के लिए कि सारा पूछेंगे कहाँ है आपका कंफर्मेशन नंबर का, रिसेप्शनिस्ट कैसे होते हैं वो अतिथि भवन नहीं है अतिथि भवन है, क्योंकि अतिथि उसको कहा जाता है जो बिना बोले बिना भगव को बिना बुकिंग से जो आता है, अतिथि जो तिथि के बिना आता है उसको अतिथि, और जो तिथि के साथ आता है बार बार आता है उसको अभ्यागत कहते हैं, अभी तक आगत बार बार आता रहता है, तो हम लोग सब इसी खुशी में है कोई अतिथि नहीं, अतिथि हो गए सर रखेंगे नहीं कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन यहां नित्यानंद प्रभु जो अतिथि पता नहीं अपरिचित लेकिन कंठी है गले में तिलक है हरि नाम है उनको मानते वैष्णव, उन्हीं को पूजा करने का रिसेप्शन मतलब नहीं बैठे बैठे आओ ठीक आए हैं ठीक है बैठे देखे ऐसे रिसेप्शन हम लोग रिसीव करते हैं, बोले माता ऐसे नहीं कोई वैष्णव आ गया तो साक्षात बलराम नित्यानंद प्रभु उठ करके उनको पूजा करने का तो अलार्म किए, बोले मैं क्या डिपार्टमेंट लूंगा, मैं जितने अतिथि भक्तगण आएंगे इस फेस्टिवल में सबको मैंने रिसीव नहीं करूंगा, ये नहीं कह रिसेप्शन, बोले रिसेप्शन काउंटर नहीं क्या काउंटर पूजा काउंटर, पूजा के बाद फंडला लेकर बैठेंगे, बोले सबको पूजा करूंगा, पूजा कैसे माल्य चंदन और पद धोता आदि मिश्र जो जो पूजा के समय इस प्रकार देख रहे पूजा किया जाता था, और ये पूजा करना स्वयं बलराम आदि आचार्य सिखाते हैं कि रिसेप्शन कैसा होना चाहिए पूजा के द्वारा होना चाहिए, वैष्णव पूजित अधिकार बोले डिपार्टमेंट मेरा अधिकार मुझे पूजा करना अब कह बोले आमी सब घसी बहुत चंदन नित्यानंद प्रभु बोले आप करेंगे तो आपके हेल्प मुझे ले लो ना क्या कर मदद करेंगे ना हम चंदन मिश्र परिकर चंदन घिसने वाले फूल तोड़ने वाले फूल माला बनाने वाले कह बोले जल आने वाले मोर भारत के बोला आप तो पानी तो चाहिए सबको पैर धोएंगे देंगे जल पान कर बोले पानी में लेकर आओ क्योंकि तभी तो सप्लाई म्यूनिसिपैलिटी था नहीं टैप खोल दो पानी आ जाए पानी कहीं से दूर से तालाब से नदी से कुआं से लाना पड़ता था तो हम पानी लाएंगे हमको अगर इसे बोला जाए कि थोड़ा जल दो टैप है तो ले आएंगे तो बोलेंगे यहां से लेकर आओ काम नहीं करेंगे क्या समझेगा इतने सवाल विलास तो बोलते हम जा रोज कर दिए कह बोले जल आने वाले में उखाड़ा कह बोले मोरस स्थान उपस्कार बोलते कि मेरा डिपार्टमेंट लीजिए मैं झाड़ू लगाऊंगा उपस्कार साफ करने का मैं झाड़ू लेकर आऊंगा सर साफ करते रहूंगा उपस्कार करने का कह बोले मोई जता वैष्णव चरणा मोरा भार सकल करे प्रख्यालन नित्यानंद प्रभु मुझे भी आपके साथ ले लीजिए आप पूजा करेंगे चरण धोने बार बार जो कहे कि आप तुम्हारा चरण मैं चरण दूंगा, रख लीजिए आपकी ओर से मैं सबका चरण प्रख्यापन करूंगा। केह बांधे पता का चंद वा कही जाने, बोले ठीक है इतनी सी पूजा पति करेंगे लेकिन आएंगे घर तो सजाना पड़ेगा ना, सजावट। बोले हम चांदवा खींचेंगे समियाना, के बोले के पत्ता में आपका डेकोरेशन करेंगे, कहे बोले मैं पताका टांगूंगा लाल पीले कलर के। आरा कत्तो जनो हरि बोले कीर्तन, बोले हम लोग कीर्तन करेंगे सर, सजावट होगा, रिसेप्शन होगा, कुकिंग होगा, कीर्तन भी तो होना चाहिए। बोले हम कीर्तन करेंगे, कीर्तन है कीर्तन कर रहे होते। आरा कत्तो जनो हरि बोले कीर्तन, शंख घंटा बजाए ना, आरा कत्तो जनो बोले हम कीर्तन करेंगे, हम बजाएंगे शंख घंटा पताल लेकर कुछ खड़े हुए। कत जना कथे तथी पूजी वाला कार्य, बोले महाप्रभु नित्यानंद आप अकेले, हम पूजा के हेल्प करेंगे, असिस्टेंट बनेंगे। केहवा हैला तिथि पुजारा आचार्य, बोले हम आचार्य बनेंगे पूजा के, मंत्र पाठ करेंगे। ऐ मत परमानंद रस भक्तगण, इस प्रकार आनंद के भाव से अनेक भक्तगण सब सेवा में जुट गए। माधव पूजा करने के लिए अधिचर्य पूजा करना चाहे लेकिन हजारों भक्त सेवा में जुट गए। सभी करे न कार्य जारा जन्म न खाओ पियो ले दह आरा हरि ध्वनि, यहां सब चतुर्थी के आरा नहीं सुनी। फेस्टिवल कैसे रहा, मैंने खाना पीना और हरि नाम कीर्तन सारे दिशा में, उसके अलावा कुछ नहीं, जहां जाओ फिस्ट खाओ और जूस पियो कीर्तन करो, बस तीन ही काम है। संकीर्तन संगीत ध्वनि बाज हे विशाल परानंदे कहर नहीं को बाह्य ज्ञान। तो इस प्रकार अद्वैत भवन है श्री वैकुंठ धाम, इस प्रकार से अद्वैत के घर साक्षात वैकुंठ बन गया। वैकुंठ नाथ जो है तो क्यों नहीं बनेंगे, वैकुंठ वैकुंठ बना दिए। आपने श्री गौरचंद्र परम संतो से संभालेरा सजा देखी, बोले न हरि से गौरा महाप्रभु, बोले इतने सब चल रहा है, थोड़ा इंस्पेक्शन करने जाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या सब कर रहे हैं, कोई किट बटन होना चाहिए देखने के लिए कोई कमी है क्या है क्या क्या सब। तो महाप्रभु कुछ साथ सेक्रेटरी को साथ में लेकर के घूम कर देखते हैं क्या क्या सब काम करते हैं, क्या क्या सब सामान आकर स्टॉक में रखा गया, देखने के लिए निकले महाप्रभु परिवेश अद्वित भवन को घूम रहे हैं। घूम कर क्या देख रहे हैं कि तंडुरा देखा है प्रभु घर दुई चारी, घर मतलब जिस हम कहते ना एक टन राइस है, हम वजन में करते थे, वजन भजन नहीं करते थे, नाप होता था, एक होता वजन में दिखती होगा तो नाप में होता था कि नाप समझते ना, आजकल तो नापते हैं तोला में, लिक्विड भी नापते हैं ग्लास में, कभी से एक प्रकार के टोकरी होता है उसमें नाप दिए है ना, तो तभी टोकरी फोकरी नहीं था, तो एक छोटा सा कमरा होता था, एक कमरा में भर जाने से एक घर हुआ दो घर हुआ, समझ लो नाप ऐसे 100 ग्राम ऐसे लीटर में आता है, तो इसलिए एक कमरा करके रखते थे, इसमें सामान नापा जाता था एक कमरा। तो महाप्रभु देखते हैं कि कितने चावल इकट्ठा हुआ है, बोलते हैं संतोष तंडुला मतलब चावल, तंडुला देखे प्रभु घर दुई चाली, चार घर भरा हुआ था चावल, चार रूम चावल में भरा हुआ था। और दूसरा पर्वत प्रमाण देखे काष्ठ सारी सारी उसके पास में, और घर में ही रखा था बाहर में पहाड़ बना हुआ था लकड़ी का चूल्हा के लिए, लकड़ी पर्वत सारी सारी बना हुआ, कई पर्वत लकड़ी रखा गया था। उसके बाद घर पांच देखे घट रंधन थाली, जो पात्र है मटका हंडी और कढ़ाई ये सब पांच घर में भरा हुआ था पात्र के कुकिंग करने के समान। घर दुई चारी देखे दुग्धर मुदगेर और डाल, डाल था दो चार घर में भर करके डाल था, मूंग डाल था केवल, बाकी को डाल नहीं था। और क्या था नाना विधा वस्त्र देखे घर पांच सात, सात घर में कपड़ा भरा हुआ था अलग अलग कलर के, अलग अलग साची धोती साड़ी चादर सब गिफ्ट देंगे सब लोग ला कर दे रहे हैं, सात घर में कपड़ा भरा हुआ था। घर दस बार प्रभु देखे खोला पात्र, और दस घर में पत्थर भरा हुआ था, कितने लोग हैं लिपलेट लपलेट में, तो खोला पात्र तो केला के पत्थर, केला पत्ता तो यहाँ पर दिल में तो नहीं मिलता है, अब मायापुर पुरी वगैरह जाओ तो खाए होंगे, केला के पत्ता कितने घर में था, दस घर में था, पत्ता ज्यादा चाहिए ना। फिर घर दुई चारी प्रभु देखे चिपिटक, चिपिटक को जानते क्या होता है, फ्लैट सीढ़ा सीढ़ा कुहा कुहा पोहा इसको बोलते चिपिटक। ये चार घर में पोहा था, ब्रेकफास्ट में शायद पोहा करते होंगे, छोड़ा देखा थे ना चिपिटक। और सहस्र सहस्र कांधी देखे कदल, कांधी समझते ना केला, केला के जो पेड़ से निकलता ना, अब देखे कभी आपको सब मार्केट से इसी जो पेड़ से निकलता है केला लगा हुआ पेड़ से, उसी को कांधी बोलते हैं जो रब लगा हुआ है। तो सहस्र मतलब हजार हजार केला के, वो कांधी मतलब एक एक कांधी में कम से कम 100-200 डजन का केला होता है, तो ऐसे हजारों हजारों कांधी केला रखा हुआ था। सहस्र सहस्र कांधी देखे कदल कर, ना जाने कते का नारिकल गुआ पान, बोलते कि नारिकल कितना था तो गिनती नहीं हो सकता, उसको मैं हिसाब नहीं कर सकता कितने लोड रखा हुआ था, नारियल पान और सुपारी ये कितना था उसके हिसाब में। कोता है ते आसिया है लग दिमाग, ये सब कहां से आया मुझे हो पता नहीं, लोग आते ही जमा करते जा रहे, खरीदते जा रहे, लोग कहां से आया, कोई बाजार से कोई नहीं खरीदे थे ना, सब अपना पाया। और क्या कह रहा था ना, पटोल, पटोल है ना परवल, परवल को पटोल बोलते हैं, पटोल बार्ता को बैगन, और थोड़ थोड़ कहते हैं जो केला के बीच में और उसके फूल, कभी कोई खाए वो केला को सर, केला हो जाने के बाद निकाल देंगे उसके सर निकाल के बीच में सफेद का जो निकलता है, निकलता है और थोड़ वो, और आलू, आलू को सब जानते हैं लेकिन ये बिलाती, ये आलू नहीं था जिसे आलू खाते हैं, वो देसी आलू था, देसी आलू और साग, साग तो समझते ना ग्रीन लेफी वेजिटेबल, वो साग ये तो हिसाब में कितना था, कई ट्रक लोड पड़ा हुआ था, कत घर भरी आचे नहीं तो प्रमाण, कितने घर भरा है कोई हिसाब नहीं उसका, ये आइटम से सब्जी और साग से। सहस्र सहस्र घड़ा देखे दग्धी दुग्ध, हजार हजार मटका भर के दही और दूध रखा हुआ था, खीरा और इक्षुदंडा अंकुरेरा माने मुद्गा, सने मुद्गा मतलब और क्या रखा था कि दूध, और अंकुर मुद्गा मतलब स्प्राउट, मूंग के स्प्राउट उसको बोलते हैं अंकुरित मूंग, स्प्राउट मूंग के स्प्राउट के साथ गन्ना के रस और दूध, दूध मतलब कंडेंस मिल्क और उसके साथ गन्ना के जूस डाल करके, स्प्राउट डाल करके पात्र भर भर के न जाने कितना रखा हुआ था, अरे ना क्या आइटम बना हुआ था, ऐसे तो बनाते नहीं होंगे हम तो, नमक डाल करके नींबू डालकर खाते हैं, बीमारी है क्या करें, लेकिन यहाँ इक्षु दंड मतलब गन्ना के जूस फ्रेश और उसमें दूध डाल करके स्प्राउट डाल करके रखा गया था। और तैला लवण घृत कलस देखे प्रभु जद, तेल का घी का नमक का पात्र तो कितना है क्या बताऊंगी नहीं, सकल अनंत लिखी वाले पारिक तो बोले वो तो हिसाब अनंत लिखेंगे, इतने आइटम रखा हुआ था। अति अमानुषी देखी सकल संभार बोली तो अति अमानुषी को मनुष्य नहीं कर सकता इतना, चित्ते देना प्रभु रहले चमत्कार, भगवान देख करके चमत्कृत होते बोले वाह, कोई जगत में मनुष्य तो इतना आयोजन कर ही नहीं सकता, इतने बड़े फेस्टिविटी, इतने बड़े फेस्टिवल, और कोई कभी फंडरेजिंग नहीं किए थे, मीटिंग नहीं किए थे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, आपने आप माधवेंद्रपुरी जैसे उनके पिति के अरेंजमेंट भी ऐसे सब अपना हो गया था। मनुष्य कतक की संपत्ति संभव है, ये संपत्ति सकले महादेव बोले सख्यात शंकर, महादेव भी ऐसा करते हैं, बोलते महादेव तो ही है सदा संयुक्त अद्वित आचार्य, इसलिए इस प्रकार नहीं कर पाए, इस प्रकार करके इतने बड़े आयोजन भगवान ने देखे, देख कर खूब खुश हो गए, खुश कर देखे लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, कुकिंग चल रहा है, भोजन चल रहा है और समान आ रहा है और कीर्तन चल रहा है, उसको देख कर भगवान इतने खुशी हो गए, खुश होकर अद्वित आचार्य को कुछ उनको शाबाशी दिए, उनके महिमा वंदन करके उनको वंदना करके स्वयं आकर के नाचने लगे, भगवान नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु आ गए, उनकी गोष्ठी आ गए, खूब नृत्य चला, नृत्य थक जाने के बाद अध्याचार्य आके बोले कि अब हो गया फेस्टिवल, अब प्रसाद लीजिए, तब उनको प्रसाद लेने के लिए बुलाया। तबे से आज्ञा मांगी अद्वैत आचार्य भोजन रा करिते लागिला सर्व कार्य होने सब इसलिए ड्यूटी लास्ट पोजीशन है सब खाए उनके लिए लास्ट में बैठे आसन बनाए वसीले ना महाप्रभु करिते भोजन मध्य प्रभु चतुर्दी के सब भक्तगण भोजन करने के बैठे थे महाप्रभु बीच में बैठ गए बाकी सारे भक्तगण मंडल कर वो रावण करके चारों तरफ बैठ गए बीच में महाप्रभु बैठे कैसे दृश्य होता है ना मध्य महाप्रभु चतुर्दी के भक्तगण चतुर्दी के भक्तगण जेना ताराचर भक्तगण चारों दिग में ऐसे मंडल को बनते जैसे तारा गण है आकाश में तारा मंडल के इसी तारा मंडल जैसा मध्य कोटि चंद्र जेना प्रभु रहता है एक ही चंद्रमा महाप्रभु है और चारों तरफ तारा गण है ऐसे भक्तगण बैठे और क्या खाते हैं ना दिव्य अन्न बहुविध पिष्टक पिष्टक व्यंजन दिव्य अन्न और सब्जी तो इसके अलावा बना था पिष्टक कई प्रकार केक था व्यंजन तो बहुत प्रकार के वैरायटी का था माधवेंद्र आराधना आई रंधन बोले माधवेंद्र की भोग लगा कुकिंग कौन किया आई ने किया सची माँ किया सची माँ के हाथ के बनाए हुआ आइटम माधवेंद्र को भोग लगा है खाते को भक्तगण साक्षात सह साक्षात गौरांग भगवान बैठकर खाते हैं माधवेंद्र पुरी का कथा कहिया कहिया इस प्रकार माधवेंद्र पुरी की कथा महिमा बोलते बोलते उनकी आलोचना करते करते भोजन करे न प्रभु सब भक्त लया सारे भक्तों के साथ में बैठ कर महापुरुष भोजन करते रहे प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना अतिथि बोलते बोलते खा करके अंत में घोषणा करते हैं प्रभु प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना अतिथि भक्ति है गोविंदे भोजन है लतथी बोले जो इस प्रकार के माधवेंद्र की तिथि में भक्तों के साथ बैठ कर भोजन करता है उनका गोविंद में भक्ति हो ही जाएगा भक्ति है गोविंद भोजन कर लेता थी या भोजन करने से ही खाने से गोविंद भक्ति हो जाएगा ये भगवान ने अनाउंस कर दिए तो इसी अनाउंस सुनकर साथी हो रहा है उसी का डॉक्टर और भगवान ने अनाउंस कर दिए जो खाएगा गोविंद भक्ति मिलेगा सदुर अब इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये इतने आइटम तो बन नहीं पा रहे केवल एक ही आइटम बनता है होलसेल खिचड़ी और वो भी कौन कहां से आता है कैसे खाता है पत्तल ऊपर नीचे कैसे बास खिचड़ी आइटम चलता है शांतिपुर खिचड़ी प्रसिद्ध है कई टन राइस के ऊपर खिचड़ी चलेगा लेकिन वहां पर जिस प्रकार आइटम खाए सची माँ ने बनाए इस प्रकार भक्ति है गोविंद भोजन कर लेती थी यही मत रंगे प्रभु करिया भोजन बसी लेना गया प्रभु करिया आचमन तो इस प्रकार भोजन करके आचमन करके अब स्वयं आकर के संतुष्ट लेकर माधवपुरी का इस प्रकार तिथि वर्णन करके इस प्रकार आशीर्वाद दे करके जो माधवपुरी तिथि का यहाँ आकर के सामग्री दिया जो कीर्तन किया जो जो, जो जिस जिस प्रकार के सेवा किया जो सेवा कुछ नहीं कर पाया आकर के खाया उनको भी गोविंद भक्त मिल जाए बोले 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 हम लोग के लिए के जो एडवांस आएंगे भक्तगण वो तो कभी थे नहीं ना कुछ लाए ना खाए ना नाचे ना गाए कुछ नहीं कर पाए बोले उनके लिए अगर माधवेंद्र पुरी का तिथि के दिन माधवेंद्र पुरी का इस प्रकार कथा को बोलेंगे सुनेंगे उनको भी गोविंद चरण भक्ति प्राप्त हो जाएगा श्री माधवेंद्र परिपाद गोस्वामी जी की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री अद्वैताचार्य की हरि के आनंदे।